हिडन फाइल्स साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। रेड एफएम पर वी आर बैक विद अनदर थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ हिडन फाइल्स, इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम रेडियो शो। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा केस जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग, स्पेशली सेलिब्रिटीज, पिछले एक साल से परेशान हैं। ये क्राइम आपको भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे को।
कल फिर देर रात तुम किसी से बात कर रहे थे?
ये सवाल आकृति अपने हस्बैंड सुयश से पूछ रही थी। सुयश ने कहा,
नहीं, वो तो ऑफिस की कॉल थी।
आकृति ने कहा,
देखो झूठ मत बोलो, 12 बजे रात को ऑफिस कॉल कैसे हो सकती है?
सुयश ने समझाया,
अरे वो टाइम जोन अलग अलग होता है, एक फ्रेंच कस्टमर से डिस्कशन था।
आकृति सुयश के इस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं थी, वो तेजी से किचन में चली गई। सुयश एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट हेड है और आकृति उसकी वाइफ। आजकल अक्सर उसकी आकृति के साथ इस तरह की बहस हो जाती थी और वो कोई रीजन देके टाल देता था, पर आज 28 जनवरी थी और सुयश की शादी की सालगिरह थी। वो चाह रहा था कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट देके मामला थोड़ा ठीक किया जाए। आज वो अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की सोच रहा था और शाम के 6 बज चुके थे। उसने डेस्क से उठते उठते एक बार मेल चेक करने की सोची और उसकी नजर एक अनरीड मेल पर पड़ी। ये ईमेल लीजा मैरी की थी और 2 मिनट पहले ही आई थी। लीजा उसकी कंपनी के CFO जॉर्ज ब्रैंडन की सेक्रेटरी है। अर्जेंट वेब मीटिंग डिस्कशन ऑन सिंगापुर क्लाइंट। सुयश ने मेल खोली और उसमें 6:30 बजे का एक वेब मीटिंग इनवाइट था। उससे वो वेब मीटिंग ज्वाइन करने को कहा गया था। सुयश अब यही सोच रहा था कि वो ऑफिस में बैठ के ही मीटिंग ज्वाइन करे या टैक्सी से घर जाते वक्त मोबाइल से ही ज्वाइन कर ले। बात CFO की थी, उसे लगा कि रास्ते में अगर इंटरनेट इशू हुआ तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, पर फिर आज उसकी शादी की सालगिरह भी थी और वो वहां भी लेट नहीं होना चाहता था। सुयश ने टैक्सी बुक की और फिर 6:25 पर टैक्सी से ही वेब मीटिंग ज्वाइन कर ली। जैसे ही 6:30 हुए, लोग उस वेब कॉल में ज्वाइन करना शुरू हो गए। मीटिंग सबसे पहले प्रोक्योरमेंट टीम से डेविड ने ज्वाइन की, उसके बाद डिलीवरी हेड दिपेश ने, फिर कंपनी के CIO स्टीवन ने और फिर CFO जॉर्ज ब्रैंडन ने। मीटिंग शुरू हुई और यह डिस्कशन किसी सिंगापुर के वेंडर के पेमेंट को लेकर था। दिपेश शायद वेंडर के काम को लेकर सेटिस्फाइड नहीं था और उसने अपना कंसर्न रेज किया, पर वेंडर की लॉयल्टी को देखते हुए स्टीव ने पेमेंट रिलीज करने के लिए कहा। सभी लोग अपनी राय दे रहे थे और सुयश मोस्टली चुप ही था। मीटिंग में उसका रोल सिर्फ सर हिलाना था। मीटिंग करीब 20 मिनट चली और कंक्लूड हुआ कि करीब 3 ट्रांजेक्शन में वेंडर का पेमेंट रिलीज कर दिया जाए। जॉर्ज ने कंक्लूड किया कि वो वेंडर की मेल चेन में सुयश को ऐड कर देगा सो दैट ही कैन इनिशिएट द पेमेंट, और सुयश ने हां में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन की ईमेल आ गई और उसमें दिए गए अकाउंट में सुयश ने पेमेंट इनिशिएट कर दिया। पहला ट्रांजेक्शन $6 मिलियन का था। पेमेंट एग्जीक्यूट हो गया और सुयश ये सोच के खुश था कि आज देर रात तक रुकने से ही हैज बिकम द पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट। अगले दिन दोपहर 2 बजे फिर लीजा की मेल आई। वेब कॉल सेटअप हुई, दिपेश, स्टीवन, डेविड एंड जॉर्ज ने ज्वाइन की और फिर एक लंबे डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि वेंडर को $12 मिलियन का भी पेमेंट कर दिया जाए। प्रोसेस के तहत एक मेल सुयश को आई और सुयश ने पेमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। शाम को सुयश ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसके CFO का फोन आया। इससे पहले कि जॉर्ज कुछ बोले, सुयश ने उसे कंफर्म कर दिया कि उसने वेंडर का पेमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है, और इस पर CFO की आंखें लाल हो गई। उसने सुयश को डांटते हुए पूछा कि उसे बैंक से पिछले कुछ दिनों में हुए पेमेंट का स्टेटमेंट आया है और उसमें 2 पेमेंट मेरी परमिशन के बिना हुए हैं। सुयश ने कहा,
नहीं सर, इट वॉज कंक्लूडेड इन वेब कॉल एंड यू ओनली सेंट मी ईमेल।
जॉर्ज ने डांटते हुए पूछा, विच ईमेल? और सुयश ने वो ईमेल्स जॉर्ज को फॉरवर्ड कर दी। पर फॉरवर्ड करते ही जैसे सुयश ने कुछ नोटिस किया, ये ईमेल्स जॉर्ज के ईमेल आईडी से नहीं थी बल्कि किसी और ईमेल आईडी से थी। हालांकि ईमेल भेजने वाले का नाम जॉर्ज ब्रैंडन ही था। सुयश के तो पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वेब कॉल पर सब डिसाइड हुआ और उसके बाद ही ये ईमेल आई थी। जॉर्ज के पूछने पर सुयश ने सारी बात जॉर्ज को बता दी, पर जॉर्ज का यही कहना था कि पिछले 4 दिनों में उसने कोई वेब कॉल सुयश के साथ नहीं की। इस पर सुयश ने कहा,
सर आप डेविड, दीपेश और स्टीवन से पूछ लीजिए, दे हैव आल्सो जॉइंड द कॉल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा।
तुरंत एक वेब कॉल सेटअप की गई और फिर चारों वेब कॉल पर थे, पर सुयश को तो जैसे काटो तो खून नहीं। स्टीवन, डेविड और दीपेश ने भी मना कर दिया कि ऐसी कोई वेब कॉल पिछले दिनों में हुई ही नहीं और ना ही पेमेंट को लेकर कोई डिस्कशन हुआ। मामला एक बहुत बड़ी रकम का था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सुयश के खिलाफ तुरंत एक पुलिस कंप्लेंट हो गई और सुयश कुछ साबित ही नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ये लोग उसके साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं। इंक्वायरी शुरू हो गई और कंपनी की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम को यही लगा कि एक बड़ी रकम के चक्कर में सुयश ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और पैसे कंपनी से बाहर किन्हीं अकाउंट में भेज दिए। हालांकि अभी तक इस पैसे से सुयश को कैसे फायदा पहुंचा ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब एक ही रास्ता था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का वेट किया जाए, पर कंपनी को डर था कि इससे उसकी इमेज को फर्क पड़ सकता है, इसलिए जॉर्ज ने सुयश को फाइनल डिस्कशन के लिए अपने केबिन में बुलाया। जॉर्ज ने सिर्फ यही पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? सुयश ने कहा,
सर मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा, आप लोगों ने वेब मीटिंग में ये डिस्कस किया और कंक्लूड किया और उसके बाद मुझे ये ईमेल आई। हालांकि मेल किसी दूसरे आईडी से आई है, पर मैं ये बात कैसे झुठला दूं कि वेब कॉल पर आप ही ने मुझे पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोला था। मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं।
सुयश ने अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉर्ज के सामने रखी और जॉर्ज को एक पल को लगा कि शायद सुयश सच बोल रहा है। जॉर्ज ने सुयश की वो ईमेल भी देखी जो लीजा के आईडी से आई थी और जिसमें वो वेब मीटिंग लिंक भेजा गया था। हालांकि लीजा ने भी साफ इनकार कर दिया कि ये ईमेल्स उसने भेजी ही नहीं। जॉर्ज को लगा कि एक डीपर जांच तो होनी ही चाहिए और इस तरह एक कॉमन कनेक्ट के थ्रू मैं इस केस से इंगेज हुआ। सबसे पहले जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे उनके डिटेल्स निकाले गए। बैंक अकाउंट अलग अलग कंट्रीज के थे और मनी ट्रेल मिलने में वक्त लग रहा था। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि पैसा क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया हो। सुयश से हमें वो ईमेल्स भी मिल गई जो लीजा ने भेजी थी। ईमेल हेडर को भी एनालाइज किया गया पर उसमें सोर्स आईपीज हिडन थे। सुयश से बार बार बात करने पर यही इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वीडियो कॉल में सभी लोग थे और ये लोग अब झूठ बोल रहे हैं। अब एक ही बात हो सकती थी कि या तो सुयश झूठ बोल रहा है या बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी कि सारे लोग सच बोल रहे हैं। और अगर सारे लोग सच बोल रहे हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था। फिर तो सिर्फ डीप फेक के थ्रू ही ये पॉसिबल था। किसी ने डेविड, दीपेश, स्टीवन, जॉर्ज सबका डीप फेक क्लोन तैयार किया उनकी आवाज के साथ और उनको वेब मीटिंग कॉल्स में यूज किया गया। अगर ऐसा था तो क्रिमिनल्स बहुत हाईटेक थे। इतनी सफाई से ये सब कर लेना इतना आसान नहीं था। क्रिमिनल्स अगर डीप फेक तक जा सकते थे तो फिर उन्होंने बाकी सारे प्रोविजंस भी यूज किए होंगे जिससे उनकी डिजिटल फुटप्रिंट्स एक्सपोज ना हो। उनके ईमेल हेडर्स, आईपी लॉग्स सब कुछ हिडन था, या फिर उन्होंने वीपीएन के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट किया था। उस दिन सुबह सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि मुझे जॉर्ज का फोन आया। उन्होंने मुझसे केस के बारे में अपडेट मांगी। मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन जारी है पर अभी तक कुछ कंक्लूड नहीं हुआ है। जॉर्ज ने कहा,
अरे सर आप सुयश के सारे पर्सनल डिटेल्स चेक करें, वो किस किस से टच में था, हमें कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा।
बात ठीक थी। मैंने कहा कि क्या सुयश की परमिशन से हम उसका फोन स्कैन कर सकते हैं। मैं जॉर्ज के ऑफिस पहुंचा और मैंने उसका कोट नोटिस करते हुए विश किया, गुड मॉर्निंग जॉर्ज, नाइस कोट। सुयश को भी मीटिंग रूम में बुला लिया गया और फिर सुयश की परमिशन से सुयश का लैपटॉप और मोबाइल फोन चेक करने के लिए ले लिया गया। मैंने सुयश से पूछा, वो वह मीटिंग उसने अपने लैपटॉप से ज्वाइन की थी या मोबाइल से? सुयश ने कहा कि वो तो लैपटॉप से ही ज्वाइन करता है। मैंने अभी लैपटॉप हाथ में लिया ही था कि सुयश ने मुझे टोका,
सर मुझे याद आया, पहली बार वेब कॉल मैंने मोबाइल से ज्वाइन की थी। एक्चुअली उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी और मैं शाम को टैक्सी से घर जा रहा था।
मैंने सुयश से उसका फोन ले लिया और उसके फोन की एक्टिविटी लिस्ट देखी, उस डेट एंड टाइम की जब सुयश ने मीटिंग ज्वाइन की थी। उसके फोन की एक्टिविटी लिस्ट से यह साबित हो गया कि सुयश सच कह रहा है, वो वाकई वेब कॉल में ही था। मैं सुयश के फोन को स्कैन कर रहा था और सुयश के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैंने फोन स्कैन किया और तुरंत कुछ नोटिस किया और कहा, तुम्हारे फोन में तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है। सुयश ने कहा,
सर ये क्या होता है, मुझे नहीं पता।
मैंने कहा, अरे ये ऐप साइलेंटली आपके फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करती है और वो रिकॉर्डिंग्स क्लाउड पर अपलोड हो जाती है। सुयश एकदम से चौंक गया। उसने कहा,
नहीं सर, I haven't installed anything like this.
पर ये देख के मेरी आंखों में चमक आ गई थी। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है तो पॉसिबल है कि सुयश की वेब कॉल्स भी रिकॉर्ड हुई हों। मैंने मोबाइल तुरंत लैपटॉप से कनेक्ट किया और सुयश के मोबाइल से रिकॉर्डेड कंटेंट का डेटा फिल्टर करने लगा और फिर अचानक मेरी नजर एक रिकॉर्डिंग पर जाकर अटक गई। वो सुयश की वेब मीटिंग कॉल की ही रिकॉर्डिंग थी। मैंने वो रिकॉर्डिंग प्ले की और मैं चौंक गया। मेरे सामने सुयश के अलावा उस वीडियो में दीपेश, स्टीवन, डेविड भी दिख रहे थे और मैं उन्हें उनकी ही आवाज में सुन रहा था, हूबहू। कोई नहीं कह सकता था कि ये AI जनरेटेड फेसेस हैं। अनबिलीवेबल। मैं उस वीडियो को बार बार प्ले कर रहा था और फिर मैंने कुछ नोटिस किया। मैंने तुरंत जॉर्ज को बुलाया। मैंने कहा, जरा अपना वीडियो देखिए। जॉर्ज भी अपना वीडियो देख के चौंक गया। मैंने जॉर्ज को दिखाया और कहा, ये वीडियो तो 28 जनवरी का रिकॉर्ड हुआ है ना। जॉर्ज ने हां में सर हिलाया। वीडियो में जॉर्ज अपने ऑफिस की चेयर पर ही था। उसके ऑफिस का ही बैकग्राउंड था और उसने वही कोट पहना हुआ था जो आज पहना था। जॉर्ज ने अचानक मुझे देखा और कहा,
आपको लग रहा है कि डीप फेक वीडियो नहीं है और ये रियल में मैं हूं क्योंकि इसमें मेरा ही कोट है।
मैंने जॉर्ज की ओर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं आपको कोट नहीं दिखा रहा हूं, जरा अपने डेस्क पर रखे कैलेंडर में डेट देखिए, उसमें 15 दिसंबर की डेट है। मतलब ये रिकॉर्डिंग 15 दिसंबर को हुई है। इसमें सिर्फ आपकी लिप सिंक और आवाज बदली गई है। जॉर्ज मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। इसका मतलब है कि इस डीप फेक वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमें उस तक पहुंचना होगा जिसने 15 दिसंबर को आपके साथ मीटिंग की है और उस दिन ये रिकॉर्ड किया है। हमने तुरंत जॉर्ज के लैपटॉप से कैलेंडर इनवाइट चेक करने शुरू किए और 15 दिसंबर को जॉर्ज ने सिर्फ एक ही वेब मीटिंग की थी। हमने देखा कि उस मीटिंग में जॉर्ज के अलावा डेविड और दीपेश भी थे। मतलब कि यह रिकॉर्डिंग डेविड या दीपेश में से ही कोई कर सकता था। डेविड और दीपेश का लैपटॉप भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मंगाया गया और मामला खुलता चला गया। डेविड इस मीटिंग का प्रेजेंटर था तो जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिंग वही कर सकता था। डेविड के लैपटॉप में स्टीवन और दीपेश की भी रिकॉर्डिंग्स मिल गई। ये एक पूरी तरह से प्लांड साइबर क्राइम था। डेविड कई दिनों से वेब कॉल के दौरान लोगों की फुल स्क्रीन में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और उसके पास सबकी सफिशिएंट रिकॉर्डिंग्स थी जिससे कि वो उनकी आवाज क्लोन कर सके और फिर उन रिकॉर्डेड वीडियोस को ही यूज कर उसने वेब मीटिंग और फिशिंग ईमेल्स के थ्रू इस क्राइम को अंजाम दिया। एक्चुअली सुयश की वाइफ आकृति ने सुयश के फोन में चुपचाप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल कर दी थी जिससे कि सुयश की ये वेब कॉल्स भी रिकॉर्ड हो गई और डेविड पकड़ा गया। ऐसे क्राइम से सेफ कैसे रहना है हम आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहली सलाह तो मेरी यही है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले करीब 2-3 चैनल से कंफर्म कर लें। सिर्फ ईमेल कंफर्मेशन या वेब मीटिंग कंफर्मेशन पर भरोसा ना करें। किसी भी वेंडर का यदि अकाउंट डिटेल्स चेंज होता है तो उसके लिए भी अप्रूवल प्रोसेस रखें। सिर्फ ईमेल पर कोई नया अकाउंट भेज देने से पैसे ट्रांसफर ना करें। आजकल हम सभी दिन में कई बार वेब कॉल्स ज्वाइन करते हैं, ऐसे में एक खतरा बना रहता है कि कोई भी हमारी रिकॉर्डिंग्स कर हमारी आवाज या फेसेस क्लोन ना कर ले। ऐसे में हर वेब कॉल्स का लॉग मेंटेन रखें कि किसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और कौन कौन उस मीटिंग में ज्वाइन हुआ था, ताकि कभी कोई इंसिडेंट होने पर हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकें जिसने की ये कॉल रिकॉर्ड की हो। वेब कॉल्स में फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन डिसेबल कर दें ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय भी सिर्फ लो रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग ही हो। याद रखें, डीप फेक के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपने लोगों को यह जानकारी देना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका कोई भी परिचित ऐसे किसी भी वीडियो पर आसानी से भरोसा कर कोई गलत कदम ना उठा बैठे। यही हमारी आपको सलाह है। वक्त हो चला है आपके साइबर सवाल का जवाब देने का। आज का सवाल किसने पूछा है, आइए सुनते हैं।
हाय, मैं सोनाली प्रयागराज से, और एज अ फीमेल मैं ये पूछना चाहती हूँ अमित जी से कि साइबर वर्ल्ड में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में, लड़कियों को क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
सोनाली, ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर मेरे पास कंप्लेंट आती है ऐसे लेडीज की जो कहीं काम कर रही हैं और उनको बदनाम करने के लिए लोग उनकी सोशल मीडिया से पिक्चर्स उठाकर मॉर्फ कर कहीं सर्कुलेट कर रहा होता है, या फिर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा होता है। ऐसे सारे क्राइम्स के अगेंस्ट हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है। आप चाहें तो www.cybercrime.gov.in पर एनोनिमस कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम के लिए ही है, और आप उस क्रिमिनल के बारे में बताकर, उसकी पोस्ट के बारे में बताकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। जब भी आप कोई पिक्चर अपनी पोस्ट करें तो लो रेजोल्यूशन में पोस्ट करें और क्लोजअप पोस्ट करने से बचें। यदि आप फुल साइज फोटो पोस्ट करेंगे तो उसमें से फेस निकालकर मॉर्फ करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए यदि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर लॉक कर लें और अपने पिक्चर्स की रेजोल्यूशन कम रखेंगे तो लोग आपकी पिक्चर्स मॉर्फ नहीं करेंगे और आपको टारगेट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, इंटरनेट पर एक बार कोई चीज पोस्ट हो जाए तो वो हमेशा वहां रहती है। उसको उसके बाद डिलीट करना या लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सोनाली जी, आपका सवाल बहुत जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जवाब आपके साथ साथ कई सारी लड़कियों को भी साइबर सिक्योर रखेगा। अगर आपको भी साइबर सिक्योर रहना है तो हमें अपना साइबर सवाल भेज दीजिए Red FM इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और कोई क्वेरी हो तो आप हमें Route64 फाउंडेशन के FB पेज पर या मेरे सोशल मीडिया हैंडल @cyberdubey पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक एक और हिडन फाइल्स एपिसोड के साथ। टिल देन, स्टे साइबर सुरक्षित। Red FM बजाते रहो।